इस दफा के सेशन के लिए जो सवाल आए हैं उनमें सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि किस्तों पर सामान खरीदने का फिक्ही हुक्म क्या है। देखिए, एक शायद मिसकॉन्सेप्ट जो लोगों के जहनों में है वो इस हवाले से है कि लोग शायद ये समझते हैं, शायद वल्लाहु आलम, कि नफा कमाना शरीयत में जायज़ नहीं है। अच्छा, इस समझने की वजह जो मैं ये कह रहा हूँ कि शायद लोग ये समझते हैं, उसकी एक ख़ास वजह है, और वजह ये है कि जब उनको वो बैंकिंग के मसाइल की बात आती है और या कर्जे पे सूदी कर्जे की बात आती है तो उसमें जब तरीके बताते हैं उनको कि आप यूं की बजाय यूं कर लें, यूं की बजाय यूं कर लें, कहते हैं यार ये भी तो वही बात हो गई, इसमें भी तो आपको वही 10 रुपये जो उस तरह मिल रहे थे वही 10 रुपये आपने इस तरह कमा लिए। तो इससे ऐसा लगता है जैसे वो समझते हैं कि 10 रुपये कमाना जो है वो हराम है, तभी वो कहते हैं कि उस तरह भी 10 रुपये कमाए, इस तरह भी 10 रुपये कमाए, आप वो कैसे हराम हो गया और ये कैसे हलाल हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। कुरान या रिवायात या अल्लाह और रसूल और अहले बैत अलैहिस्सलाम आपकी कमाई के मुखालिफ नहीं है, वो जिस चीज़ के मुखालिफ हैं वो सूद के मुखालिफ हैं, रिबा। अहल्लल्लाहु अल-बै व हर्रमुर रिबा, जिस अल्लाह ने रिबा को हराम किया है उसी अल्लाह ने बे और कारोबार को और खरीदो फरोख्त को हलाल बनाया है। शरीयत ये नहीं चाहती कि आप हराम तरीके से कमाएं, शरीयत ये चाहती है कि आप हलाल तरीके से कमाएं। इसका मतलब यह है कि कमाने की मुनकर नहीं है शरीयत, कमाएगा नहीं तो इंसान की जिंदगी कैसे गुजरेगी। तो कमाना तो इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए और तरक्की करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहरहाल जरूरी है। बस जो चीज इस्लाम की निगाह में काबिल कबूल नहीं है वो असल कमाई नहीं है, वो रविश कमाई, उसमें बहस करता है इस्लाम कि किस रविश को, किस तरीके को कबूल करता है, किस तरीके और रविश को कबूल नहीं करता, ये जानने की ज़रूरत है। और फिर इस्लाम कहता है कि जब तुम्हें पता चल गया कि ये तरीका हलाल है और ये तरीका हराम है तो हराम से बचाओ, हलाल तरीके से कमाओ, जितना मर्जी कमाओ। इसीलिए शायद ये सुनकर आपको ताज्जुब होगा, क्योंकि जो सुनता है उसको वाकई ताज्जुब होता है कि इस्लाम में प्रॉफिट रेट कोई मुअय्यन नहीं है। ये चीज़ मेरी 100 रुपये की है, आप 10,000 की बेचना चाहें अगर कोई मिल जाए खरीदार तो बिलफर्ज। देखिए मसला क्या होता है, होता ये है कि मसलन फ़र्ज करें अगर आप मार्केट में चीज़ लेके बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुस्त किस्म के लोग होते हैं मेरी तरह के, वो एक ही दुकान पे जाते हैं, पूछते हैं, चीज़ लेते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह आपकी तरह के जो बाहुनर लोग होते हैं वो पहले तो पूरा बाजार खंगालते हैं, दुरुस्त, उसके बाद जो सबसे कम पैसे दे रहा होता है उसके पास जाके झूठ बोलते हैं कि जी वो दूसरा तो इससे भी कम में दे रहा है, और फिर उसको जितना प्रेशराइज कर सकते हैं, उनका बस चले तो मुफ्त में चीज़ लेकर आएं, लेकिन वो बस नहीं चलता, लिहाजा कुछ पैसे देकर चीज़ लेकर आ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप मार्केट में बैठे हुए हैं तो नॉर्मली जो नॉर्मल रेट चल रहा है मार्केट में, कौन मिलेगा आपको कि जो उससे ज़्यादा पे लेगा, जबकि आपकी 7 वाली दुकान वाला, मतलब फर्ज इनसे मोबाइल मार्केट को, एक दुकान तो नहीं आपके यार, एक ही दुकान थी, मुझे तो पता ही नहीं मार्केट क्या चल रही थी, और 100 दुकानें एक साथ, आप एक से निकले दूसरे, हर कोई आपको खींच रहा होता है। तो जहां मार्केट हो किसी चीज की, वहां पर मतलब फर्ज करें अगर एक चीज ये 100 रुपये की है तो कौन है जो 125 की लेकर आएगा, 25 रुपये भी ज्यादा नहीं देगा, खासतौर पर ऐसा शख्स जो मार्केट देखकर लेने का आदी हो, दुरुस्त। तो वो फिर ऑटोमेटिकली आप बाउंड हो जाते हैं कि 100 की चीज को 100 ही में बेचें, वरना कुछ बिकेगी नहीं वो चीज़ आपकी, पूरी मार्केट खाली हो जाएगी मगर आपकी चीज़, हाँ खाली होने के बाद शायद बिक जाए लेकिन उससे पहले तो कम से कम वो चीज़ आपकी नहीं बिकेगी। तो ये जो आप एक प्रॉफिट की मकदार को मुअय्यन करके ले रहे होते हैं ये नॉर्मली मार्केट ट्रेंड की वजह से होता है, वरना शरीयत ने आपको कोई लिमिटेशन नहीं दी। आप 100 की चीज़ को 10,000 में बेचना चाहें बेचें, आप 1000% उसके ऊपर प्रॉफिट लेना चाहें आप 1000% प्रॉफिट ले लें, कोई हर्ज नहीं है। वरना अगर फर्ज करें कि शरीयत ने कोई चीज़ मुअय्यन की हो, मतलब फर्ज करें 25 साल पहले आपने कोई प्लॉट लिया था लाख रुपए का, आज वही प्लॉट करोड़ रुपए का हो गया मसलन, तो आपके लिए बेचना जायज होता है मगर करोड़ रुपए में। अगर फर्ज करें शरीयत, मसलन अभी समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, फर्ज करें शरीयत कहती थी 10% से ज्यादा आप प्रॉफिट नहीं ले सकते, तो लाख रुपए का आप ज्यादा से ज्यादा बेच सके तो 1,10,000 में, मगर 1 करोड़ में आप फिर बेच सकें? नहीं बेच सकते आप, तो इसी वजह से बेच सकते हैं कि शरीयत ने कोई आपको पाबंद नहीं किया है। तो ये मार्केट वैल्यू उसकी 1 करोड़ होगी, आप भी 1 करोड़ में बेच रहे, लाख का लिया था 1 करोड़ में बेच रहे हैं आप, कितना प्रॉफिट कमा लिया आपने, कोई हर्ज नहीं है। शरीयत को आपके जायज तरीके से कमाने में शरीयत को किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है, दुरुस्त। ये एक चीज। अब आए हम अपने असल मसले की तरफ। सवाल ये है कि आया किस्तों में अगर चीज खरीदी जाए तो उसके अहकाम क्या हैं? ये जो सवाल है ये पैदा यहीं से होता है कि मतलब फर्ज करें ये चीज 1,000 रुपए की है, मैं आपको कहता हूं कि सही है अगर आप 1,000 रुपए की किस्तों में लेंगे तो ये आपको, मतलब मैं, आपने कहा जी 1,000 रुपए तो मेरे पास नहीं, मैं तो 100 रुपए महीना दे सकती हूं, तो ठीक है 100 रुपए महीना दे दो, लेकिन फिर मैं 1,000 की नहीं 1,500 की आपको बेचूंगा। तो लोगों के जहनों में ये आता है कि शायद ये सूद है, ये 500 रुपए जो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं ये सूद ले रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है। ये मैं मुद्दत के मुकाबले में नहीं ले रहा हूं। एक चीज की दो कीमतें हो सकती हैं, कैश में कीमत उसकी कुछ और हो और किस्तों में और इंस्टॉलमेंट्स पर उसकी कीमत कुछ और हो। इसी की कीमतें दो हैं, कैश कीमत 1,000 और इंस्टॉलमेंट से कीमत, इसी चीज की कीमत 1,500। तो जब एक चीज 1,500 की है और मैं आपको 1,500 ही की बेच रहा हूं और आप मुझे किस्तों में उसके 1,500 दे रहे हैं, तो क्या मुश्किल है इसमें? कौन सा सूद लाजिम आया? कोई सूद लाजिम नहीं। आपने एक खरीदो फरोख्त किया ना, अहल्लल्लाहुल बे, खरीदो फरोख्त को खुदा ने हलाल किया है। इसीलिए वो फोकहा जो जहां पर बैंक में सूद वूद वाली कहानियां आती हैं उसको शिफ्ट करते हैं किसी ऐसे टाइटल की तरफ कि वो बजाय इसके, क्योंकि देखें कर्जा अगर आप लें या दें और उस पर एक्स्ट्रा लें या दें तो ये सूद है, दुरुस्त। कर्जे पे लेना देना और एक्स्ट्रा लेना देना ये सूद है, लेकिन अगर आप कर्जे की बजाय उसकी शक्ल बदल रहे, जैसा आजकल मैं मिसाल दूं आपको, मतलब ये जो इस्लामिक बैंकिंग चल रही है उन्होंने क्या किया है आपके ख्याल में? उन्होंने पूरा निज़ाम चेंज किया, कोई इनकलाब लेकर आए? कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ जो पहले आपका एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट बनता था उसको उन्होंने लोन से निकाल कर जो शरई टाइटल्स हैं, मुजारबा, मुशारका, इजारा, हिबा, इसके अंदर चेंज कर दिया। मतलब मुझे ये मोबाइल लेना है, आपने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है पर मोबाइल लेने के, मैं कहा चलो मैं किसी से उधार ले लेता हूं। मैं गया जनाब, मतलब फर्ज कर मैं आपके पास आया जी, मुझे इसका 1,000 रुपए का मोबाइल लेना है तो मुझे 1,000 रुपया कर्जा चाहिए। आपने कहा ठीक है मैं 1,000 रुपया कर्जा आपको दे देता हूं लेकिन लूंगा 1,100 रुपये वापस। 1,000 रुपया कर्जा देकर वापस 1,100 ले रहे, ये है सूद। लेकिन अगर वो ये कहे कि ठीक है आपको, मतलब फर्ज करें मोबाइल चाहिए, मैं खरीदता हूं मोबाइल, आपको लोन नहीं दे रहा हूं, गौर करें आप, लोग कहते हैं यार ये क्या बात हुई, तो आपने मतलब यही सारी बात होती है, कहानी यही होती है सारी कि शरीयत के रंग पर अगर आप चलेंगे तो शरीयत वाला ही तरीका अपनाएंगे ना, तो शरीयत आपको एक तरीका बता रही है। मैंने कहा ठीक है मुझे ये लेना है, पैसे नहीं है, आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं मैं आपको खरीद के देता हूं, खरीदूंगा मैं फिर मैं बाद में आपको बेचूंगा, आप किस्तों में दे सकते हो, वही वाली बात, मैं 1,000 रुपए का खरीद के आपको 1,500 का बेचूंगा, 100 रुपया महीना आप मुझे दे देना। या ये होता है जब जो डाउन पेमेंट वाला सिस्टम होता है जिसमें मतलब आपने कुछ पेमेंट पहले की है, मतलब फर्ज करें आपने कहा यार मेरे पास 1,000 का मोबाइल है, मेरे पास तो 1,000 नहीं, मेरे पास तो मतलब फर्ज करें हालात से 500 रुपए हैं, तो 500 आप मुझे कर्जा दे दो, तो मैंने कहा ठीक है मैं 500 कर्जा नहीं देता हूं, मैं और आप मिलकर 500-500 डालते हैं और ये मोबाइल पार्टनरशिप में खरीदते हैं, फिर जो मेरा शेयर है जो 500 का इसमें मेरा शेयर है इसमें 50%, वो मैं अपना शेयर आपको 500 की बजाय मतलब 700 का किस्तों में बेच दूंगा, 700 आप मुझे किस्तें देंगी क्या होगा नतीजा एंड पे, ये मोबाइल आपका हो जाएगा। यही चाहती थी ना, आप मोबाइल खरीदना चाहती थी, मोबाइल आपको मिल गया। जायज तरीके तो बता रहा हूं आपको कि अगर कर्जा ना दें आप, बल्कि कर्जे की फॉर्म चेंज कर दें आप, उसको मुशारका, मुजारबा, इजारा, हेबा, बिलाखिर एक्स वाई जी, जो शरी जिसको शरीयत मानती है कि हाँ ये सही है, उस चैप्टर में ले जाएं और उस चैप्टर की शराइत के एतबार से उस चीज को ढाल दें, तो वो चीज हो जाएगी ठीक। यही चीज यहां पे भी है कि एक चीज, ये सूद नहीं है, एक चीज की दो कीमतें हैं, नकदी कीमत कुछ और है और किस्ती कीमत कुछ और है, और हम उस चीज को खरीद रहे हैं, खरीदो फरोख्त हो रही है। मैं कहता हूं बे तो हाजा, आप कहते हैं कबिल तो हाजा, मुनता बजाय इसकी कि मैं इसको 1000 रुपए में आपको बेच रहा हूं क्योंकि आप किस्तों पे दे रही हैं, तो मैं कहता हूं मैं इसके आपको 1500 में बेच रहा हूं। या आपको वही काम हम कर रहे हैं कि बजाय इसके कि हम, यानी अगर मैं कर्जे के एतबार से, कर्जे के ऊपर मतलब जो टाइम पीरियड दे रहा हूं उसके अगेंस्ट पैसे लूं तो वो सूद बन सकता है, लेकिन मैं टाइम पीरियड के अगेंस्ट सूद पैसे नहीं ले रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये 500 रुपये, 1000 रुपये का ये मोबाइल, 500 रुपये ये 6 महीने की मुद्दत के या 10 महीने की मुद्दत के, नहीं, बल्कि यही मोबाइल 1500 का जिसका उसने खरीद कर 500 का खरीद कर 700 में मुझे बेचा ना, तो मैं भी बाहर से लेकर आया था, मैंने 1000 का बेचना था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आपको तो 1500 का बेचूंगा, इसलिए आपने किस्तों में पैसे देने हैं, दुरुस्त। तो ये हो जाएगा सही, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, और शरई तौर पर ये मामला जो किस्ती मामला है, अब आप जाके अपनी चीजें किस्तों में आराम से खरीद सकती हैं आप, कोई मुश्किल नहीं है। ये पहला सवाल।
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ